भारतीय भाषाओं में दलित महिला लेखन। महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है, जो भारत में दलित गौरव के प्रतीक बने। इन महापुरुषों की कोशिशों से 19वीं सदी से ही दलित जागृति का आरंभ हुआ, जो 20वीं सदी में आकर एक सशक्त आंदोलन बन गया। दलित सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव में 7वें दशक में महाराष्ट्र में दलित सांस्कृतिक व साहित्यिक आंदोलन भी शुरू हुआ। 8वें दशक के शुरू में अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन के प्रभाव में महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन ने भी स्वरूप ग्रहण किया। बाद में दलित साहित्यिक व सांस्कृतिक आंदोलन अन्य भारतीय भाषाओं तक भी पहुंचा और अब 21वीं सदी के आरंभ में भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में दलित साहित्य प्रवृत्ति संभवतः सबसे सशक्त प्रवृत्ति है। आरंभ से ही भारतीय साहित्य में नारी लेखन एक सशक्त धारा रही है। 7वें दशक के नारीवादी आंदोलन ने भारतीय साहित्यिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया। दलित लेखन के अंग रूप में भी कुछ दलित लेखिकाएं सामने आई हैं। मराठी भाषा में ही दलित स्त्री लेखन भी अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक सशक्त है। हालांकि अब प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में ही दलित स्त्री लेखिकाएं आत्मकथा या अन्य विधाओं में स्वयं को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में ही कुमुद पावड़े, बेबी कांबले, मल्लिका अमर शेख, शांताबाई कांबले व अनेक अन्य दलित लेखिकाओं ने आत्मकथा विधा में सम्माननीय स्थान बनाया है। ज्योति लांजवानी, मीना गजभिये आदि लेखिकाओं ने मराठी में सशक्त कविताएं रची हैं। राजम कृष्णन प्रसिद्ध तमिल लेखिका हैं। हिंदी में हाल में कौशल्या बैसंतरी की आत्मकथा महत्वपूर्ण है। 1882 में हिंदी में एक अज्ञात नारी की आत्मकथा सिमंतनी उपदेश भी भारतीय समाज में स्त्री की दशा के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। सुशीला टाक भौरे, बिमल खांडेकर, रतन रानी मीनू, रजनी तिलक आदि अन्य दलित लेखिकाओं ने भी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस एक आलेख में बहुत सारी पुस्तकों पर जो चर्चा संभव नहीं है, अतः दलित स्त्री लेखिकाओं की कुछ चुनिंदा रचनाओं पर यहाँ चर्चा होगी। बेबी कांबले की मराठी आत्मकथा जीना मुचाई का हिंदी अनुवाद जीवन हमारा रूप में प्रकाशित है। कौशल्या बसंतरी की हिंदी आत्मकथा दोहरा अभिशाप पर भी कुछ विस्तार से चर्चा की जाएगी। 1882 की अज्ञात लेखिका की सीमंतनी उपदेश व सुशीला टाक भौरे की हिंदी कविताओं, कहानियों व अन्य रचनाओं पर भी विचार होगा। एक मराठी डॉक्टर किशोर शांताबाई काले की आत्मकथा के हिंदी अनुवाद पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में यह आत्मकथा उसकी माँ शांताबाई काले की जीवन कथा है। यह सारा दलित लेखन भारतीय समाज में दलित स्त्रियों की वास्तविक दशा पर ध्यान केंद्रित करता है। दलित स्त्रियां तिहरे शोषण के शिकार होती हैं, जबकि दलित पुरुष दोहरा दमन झेलते हैं। आर्थिक शोषण व भारतीय जाति व्यवस्था में कथित निम्न जाति होने का सामाजिक दमन, जो कई बार हिंदू धार्मिक नियमों के अनुसार तो अस्पृश्यता तक चला जाता है, दलित स्त्रियों को ये दोनों दमन तो दलित पुरुषों के साथ झेलने पड़ते ही हैं। सामंती मूल्य व्यवस्था के चलते वे घरों के भीतर पुरुष दमन का शिकार भी होती है। दलित पुरुष भी अपने घरों व सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में स्त्रियों को दोयम दर्जा देते हैं। कई बार तो दलित स्त्रियां भी सास बहु संबंधों में दलित स्त्रियों पर ही दमन करती हैं, क्योंकि दलितों की पारिवारिक संस्कृति भी अभी भारतीय सामंती मूल्यों द्वारा ही परिचालित है, जिसमें ससुराल में बहू पर हर तरह के अत्याचार किए जाते हैं। सबसे पहले सीमंतनी उपदेश पर विचार उचित होगा, जहां लेखक रूप में एक अज्ञात हिंदू औरत का उल्लेख है। यह आत्मकथा 1 फरवरी 1882 को पहली बार लुधियाना के मुंशी कन्हैया लाल अलखधारी ने प्रकाशित की। 106 वर्ष बाद 1988 में दलित चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ने इसे अपने संपादन में पुनः प्रकाशित करवाया। 23 अध्यायों में बटी यह आत्मकथा कुल 80 पृष्ठों में सिमटी है। पुनः प्रकाशित संस्करण में डॉक्टर धर्मवीर ने इस अज्ञात औरत का संबंध पंजाब से होने की बात कही है। हाल में हंस में प्रकाशित एक लेख में इस औरत का अनुमान लोकप्रिय लेखिका भगवती रूप में लगाया गया है। धर्मवीर का अनुमान है कि यह औरत समृद्ध घराने से थी, जो बहुपठित थी। उसे स्मृतियों व अन्य धार्मिक पुस्तकों का भी ज्ञान था। यदि वह गैर पंजाबी रही होगी तो भी उसे पंजाब की गहरी जानकारी थी। धर्मवीर को लेखिका की उम्र का तो अंदाजा नहीं, लेकिन उनके अनुसार वह प्रौढ़ा होगी। वह सन्यासिनी भी हो सकती थी, लेकिन वह निसंतान रही होगी। अपनी भूमिका में धर्मवीर ने विचार व्यक्त किया है कि यह औरत अपने समय के कानून और व्यवहार से आगे बढ़ी हुई थी और अपने समय के प्रति प्रतिबद्ध थी। वह सिर्फ अपने समय की स्त्री की मुक्ति के लिए ही नहीं, वरन पूरी मानवता की मुक्ति के लिए लड़ी। अंतर्निहित रूप में इस अज्ञात लेखिका ने शूद्रों व स्त्रियों को भारतीय समाज का सर्वाधिक पीड़ित अंग माना है। उसने स्त्री को केवल स्त्री रूप में देखा है और उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र आदि में विभाजन का विरोध किया है। उसने हिंदू व मुस्लिम स्त्री के भेद का भी विरोध किया है। यह पुस्तक सामान्यतः समाज में विशेषतः स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लिखी गई थी, इसीलिए इसके प्रथम संस्करण की 300 प्रतियां पाठकों में मुफ्त वितरित की गई थी। धर्मवीर के अनुसार यह पुस्तक भारत में स्त्री जागरण का महान दस्तावेज है और उनके अनुसार यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 19वीं सदी में थी। इस पुस्तक के दो अध्याय काव्य रूप में लिखे गए हैं जो प्रार्थना के शिल्प में है। दूसरी प्रार्थना में लेखिका ने भारत में स्त्रियों की दयनीय दशा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो लेखिका के अनुसार 10,000 वर्ष से चली आ रही है। गद्य में लिखी एक अध्याय की प्रार्थना में लेखिका ने ईश्वर से भारत को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है, ताकि मनुष्य एक दूसरे की ओर करुणा से देख सके। आज की शब्दावली में पुस्तक का चौथा अध्याय आभार प्रदर्शन कहा जा सकता है, जिसमें लेखिका ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने वालों का उल्लेख किया है। इसमें मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, संपादक बिरादर हिंद राय, नवीन चंद्र और स्वामी दयानंद सरस्वती शामिल हैं। लेखिका के अनुसार इन सभी स्त्रियों की दशा के प्रति सरोकार जताया है। इन और औपचारिकताओं के बाद लेखिका ने भारतीय समाज में स्त्रियों की वास्तविक दशा पर ध्यान केंद्रित किया है। एक काव्यात्मक अध्याय में लेखिका ने हिंदू औरतों को सभी पक्षों में सम्मान खोने वाली बताया है, जो पांव के जूती भर बनकर रह गई है। उन्होंने स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे जेल में बंदी बनकर रह रही हैं और जेल को स्वर्ग माने बैठी हैं। फिर लेखिका भारतीय स्त्रियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करती है। वह जेवर के प्रति आकर्षण को वे सबसे बड़ी कमजोरी मानती है। सभी वर्गों की स्त्रियों, अमीर, मध्यवर्गीय व गरीब में जेवर के प्रति कमजोरी है। लेखिका एक एक कर सभी आभूषणों पर चर्चा करती है और स्त्री के भीतर शरीर पर इन आभूषणों के तबाहकुन प्रभावों पर ध्यान दिलाती है और वह उन्हें तार्किक बनने का परामर्श देती है। साथ ही हल्के आभूषण पहनने का भी, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेखिका स्त्रियों के आभूषण प्रेम पर तीखा व्यंग भी कसती है और कहती भी है कि वे आभूषणों पर तो हजारों रुपए खर्च कर देंगी, लेकिन अपने पाँव के सुख के लिए चार आने की जूती नहीं खरीदेंगी। इसके बाद वह भारतीय स्त्रियों के वेशभूषा पर ध्यान देती हैं और उन्हें सलाह देती हैं कि वे पूरे शरीर को ढकने वाले साफ कपड़े पहने। एक अध्याय में भारतीय नारी के अतीत के गौरव की ओर ध्यान दिलाया है, जब वह बौद्धिक बहसों में हिस्सा लेती थी और आज वह दयनीय दशा में है। पुस्तक का अधिकांश भाग सेक्स की प्रवृत्ति व स्त्री पर उसके कारण उठने वाली समस्याओं पर केंद्रित है। लेखिका स्त्री के पतन के 9 कारण गिनवाती हैं। इन कारणों में शादी न हो पाना, विधवा हो जाना, वृद्ध पुरुष से शादी होना, बच्चे से शादी होना, गरीबी आदि शामिल है। इस विश्लेषण में प्रखरता है। तब वह स्त्री को परामर्श देती हैं कि वह देह सुख के लोभ से बचे। वह विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती हैं। लेखिका अपने युग से आगे बढ़ी हुई है और घोषणा करती है कि पति द्वारा रोज पीटने से तो अच्छा है कि स्त्री शादी ही न करे। वह उन रूढ़ियों के भी खिलाफ है जो स्त्री को प्रताड़ित करती है। वह सती प्रथा के खिलाफ हैं जो स्त्री को प्रताड़ित करती है। वह बच्चे के प्रति अनावश्यक मोह को भी निंदनीय मानती है। अंत में वह स्त्री और पुरुष के में समानता की घोषणा करती हुई एक दूसरे के लिए दोनों की समान जिम्मेदारियों व अधिकारों की बात कहती है। लेखिका तो विवाहित स्त्रियों को यहाँ तक सलाह देती है कि यदि उनके पति दूसरी स्त्री से संबंध रखें तो वे भी शादी के बाद पुरुष दोस्त बना लें। वास्तव में सिमंतनी उपदेश अपने समय के हिसाब से काफ़ी क्रांतिकारी टेक्स्ट है। 19वीं सदी में ही 20वीं सदी की मुक्ति की धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, वह भी बड़े तार्किक व अधिकारपूर्ण ढंग से। चूंकि यह टेक्स्ट का संबंध सभी स्त्रियों से है और चूंकि इस पुस्तक की लेखिका अज्ञात है, इस टेक्स्ट को दलित नारी लेखन का हिस्सा माना जाना चाहिए। यहाँ तक कि भारतीय व भारत की नारी मुक्ति लेखन की अग्रदूत के रूप में इस टेक्स्ट को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। 1999 में हिंदी में प्रकाशित दोहरा अभिशाप 73 वर्षीय दलित स्त्री कार्यकर्ता कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा है, जो अपने वैवाहिक जीवन के 4 दशकों में निष्क्रिय रही हैं और फिर अपने पति से अलग होकर बड़ी उम्र में सक्रिय हुई हैं। यह आत्मकथा पढ़ने में भी तो रुचकर है ही, दलित नारी के सामाजिक यथार्थ को बड़े सादे लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले भी हैं। आत्मकथा के संक्षिप्त भूमिका में लेखिका कौशल्या नंदेश्वर बैसंतरी, जो जन्म से महाराष्ट्र से हैं, ने बताया कि वे मराठी दलित लेखिका कुमुद पावड़े से प्रभावित हैं, जिनकी आत्मकथा अंतःस्फोट ने मराठी साहित्य परिदृश्य में काफ़ी हलचल मचाई थी। भूमिका में ही लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि उसके पति स्वतंत्रता सेनानी व भारत सरकार के बड़े अधिकारी रहे, अपने 4 दशक के वैवाहिक जीवन में उसने अपनी पत्नी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे विवाह के 4 दशक बाद अलग हो गए। अपने पुत्र के साथ मद्रास में रहते हुए लेखिका ने अपने अनुभवों को हिंदी में लिखने का फैसला किया ताकि वे पाठकों के बड़े वर्ग तक पहुँच सके। क्योंकि हिंदी में दलित आत्मकथाओं की कमी है, लेखिका ने यह कदम उठाया और निस्संदेह यह बात कही जा सकती है कि इस दिशा में उनका प्रथम प्रयास एक अच्छी शुरुआत है। 28 अध्यायों व 113 पृष्ठों में सिमटी कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा में लेखिका की वृत्तांत शैली अपनी सादगी व तथ्यों के साफ चित्रण में कमाल की है। वे सीधे शैली में शुरू करती हैं, मेरी माँ पिता नागपुर की एम्प्रेस मिल में काम करते थे। इस आत्मकथा का आरंभिक चित्रण घरेलू जिंदगी का है, जिसमें गरीबी के बावजूद भरपूर स्निग्धता है। कौशल्या की माँ का चरित्र बहुत सशक्त है, जो आगे अपनी माँ से जुड़ी थी, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्पीड़न के खिलाफ बगावत की थी और अपने पांवों पर खड़े होने के लिए पति का घर छोड़ आई। कौशल्या की माँ अपनी माँ से बहुत प्रभावित थी और इसी क्रम में उसके बच्चे उसके सशक्त व्यक्तित्व से प्रभावित थे। कौशल्या के माँ बाप ने तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार सभी बाधाओं को पार कर कौशल्या ने BA पास किया। स्कूल में पढ़ते समय कौशल्या ने पहली बार नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण सुना, जिसमें लड़की लड़कियों दोनों को शिक्षा पर बल दिया गया था। कौशल्या की माँ ने 11 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 बच्चे 6 लड़कियाँ और 1 लड़का। कौशल्या अपनी अभिव्यक्ति में इतनी ईमानदार हैं कि उनकी सादगी बहुत आकर्षक बन जाती है। 10वें अध्याय में वे कहती हैं कि मैं स्कूल में खेलों आदि गतिविधियों में इसलिए हिस्सा नहीं लेती थी क्योंकि मुझमें निम्न बोध की गांठ थी, मैं अछूत हुआ, यह भाव मन में जाता नहीं था। कॉलेज में पढ़ते समय कौशल्या दलित छात्र कार्यकर्ता बन गई। उन्होंने अछूत छात्र परिषद बनाई, जिसका सम्मेलन 1943 में नागपुर में हुआ। बड़ी सादी शैली में लेखिका ने अपनी पसंद के 1-2 लड़कों का जिक्र किया है, जिनसे उसने आत्मसम्मान की भावना कारण शादी नहीं की। अपने सामाजिक उत्पीड़न के प्रति जागृत होने से दलित डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के प्रभाव में संगठित होने लगे। कौशल्या ने महाराष्ट्र में दलितों पर डॉक्टर अंबेडकर के 1947 के पहले से ही प्रभाव होने का उल्लेख किया है। 17वें अध्याय में वे बताती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का अछूतों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव स्वाभाविक ही था, क्योंकि बाबा साहेब ने पहली बार अछूत समाज को यह महसूस करवाया कि वे भी इंसान हैं, उनका अब इस देश पर वह सम्मान से जीने का अधिकार है। बाबा साहेब ने उन्हें हौसला दिया, उन्हें संघर्ष की प्रेरणा दी और मानवीय अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अछूत समाज ने भी जो भी कार्यक्रम बनाया था, जिस दिशा में भी वह जा रहा है, यह सब बाबा साहेब के कारण है। कौशल्या की आत्मकथा की तरह ही सभी मराठी आत्मकथाओं में भी यही तथ्य उतनी ही शक्ति से रेखांकित हुआ है। कौशल्या ने अतीत की कुछ दिलचस्प राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख किया। नागपुर स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल व CPI के वर्तमान महासचिव AB वर्धन का मुकाबला हुआ। कौशल्या ने उस समय कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया। 1945 में उत्तर प्रदेश में चुनाव में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति फेडरेशन के सम्मेलन में कौशल्या बिहार के देवेंद्र कुमार बैसंतरी के संपर्क में आई, जिसके पास MA LLB की डिग्रियां थी, वह जो शोध कर रहा था। कौशल्या उत्तर प्रदेश फेडरेशन की अध्यक्ष थी। बड़े आकर्षक मगर पीड़ा भरे शब्दों में कौशल्या ने बताया कि देवेंद्र कुमार से कुछ पत्राचार हुआ। वे लोग प्रेम पत्र जैसा कुछ नहीं लिखते थे, क्योंकि प्रेम था ही नहीं, शादी की बात तो देर से उठी। कौशल्या ने संतोष कुमार का जिक्र जरूर किया है जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई पहल नहीं हुई। देवेंद्र कुमार की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, उससे कौशल्या की 1947 में शादी हुई। यह विवाह सुखद अनुभव नहीं रहा, यद्यपि वे इकट्ठे रहे और उनके बच्चे भी हुए। कौशल्या अपमानित महसूस करती थी क्योंकि उनका पति आत्मकेंद्रित था, वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। कौशल्या अपने जीवन अनुभवों से काफ़ी अग्रगामी बनी। वे नास्तिक हुई, उन्होंने जातिवाद पर विश्वास नहीं किया। उनके अनुसार वे किसी जाति को निम्न नहीं मानती। उनका मद्रास वाला बेटा अयंगार ब्राह्मण परिवार में ब्याह है। दूसरे बेटे की पत्नी बंगाली कायस्थ है। तीसरे की पत्नी मध्य प्रदेश से है। उनकी बेटी एक सिख लड़के को ब्याही है। मैंने तो जाति बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक सच्चे इंसान के रूप में यह दलित उद्घोषणा की सही मानवीय भावना है। जीवन के अंतिम दौर में कौशल्या ने फिर दलित सामाजिक गतिविधियों, दलित नारी आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया है। उनकी आत्मकथा की अंतिम पंक्तियां दलित स्त्रियों के लिए प्रेरणादायक हैं। हम लोगों ने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि सम्मान के साथ प्रगति करने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने में विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी आत्मा में शक्ति जगानी होगी, दूसरों पर आश्रित होने से कुछ नहीं होगा। कौशल्या ने दलितों की गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन की स्थितियों को उघाड़ा है। उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को छिपाने का प्रयास नहीं किया। 14वें अध्याय में कौशल्या ने उस दलित स्त्री पर दुखांत उभारा है जिसका शोषण खुद उसका पति जयराम करता था, जो खुद निठल्ला रहता था और उसकी पत्नी राम कुंवर मिल में काम कर उसे खिलाती थी। एक अन्य दलित कामगार स्त्री को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वह सुंदर थी और उसे उसका काम देखने वाला अपमानित करता था। जब उसने अपने पति को अपनी व्यथा बताई तो बजाय अपनी पत्नी का बचाव करने के उसने उसे घर से निकाल दिया। उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, उसके दो छोटे बच्चे थे, तब भी लड़की के माँ बाप ने दामाद को उसकी आत्महत्या का दोषी नहीं ठहराया। देखिए क्या बड़ी सादगी से बड़ी कटीली बात कहती है। उसकी आदमी ने 6 महीने बाद किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। कौशल्या बाई संतरी की आत्मकथा आत्महत्या की शक्ति दलित स्त्रियों के जीवन के सादे मगर सच्चे और विश्वसनीय चित्रण में है। कौशल्या की आत्मकथा में चित्रित दलित स्त्रियां अत्यंत दयनीय स्त्रियां तो नहीं हैं, वे संघर्षरत हैं तथा अपनी दूसरी बहनों से वे कुछ बेहतर हालात में हैं, क्योंकि कौशल्या के माँ बाप दोनों ही नौकरी करते थे और दोनों ने अपने बच्चों लड़कियों की ओर भी ध्यान दिया। अतः लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिली और वे जीवन में अच्छी जगहों पर गईं। एक स्तर पर उसकी आत्मकथा शिक्षाप्रद भी है। इसमें दलितों को शिक्षा प्राप्ति के सद्प्रभावों को दिखाया गया है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ठीक ही जोर दिया था। मराठी भाषा में पिछले दशकों में आत्मकथा एक विशिष्ट साहित्यिक विधा बनकर उभरी है और हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और मोहनदास मिश्रा की अपने अपने पिजरे आत्मकथाओं के बाद अब कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशाप आत्मकथा से हिंदी में भी आत्मकथा विधा ने जमे जड़ा ली है। इस दृष्टि से भारतीय दलित स्त्री लेखन में कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशाप एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट के रूप में उभरी है। कौशल्या बैसंतरी तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मराठी लेखिका बेबी कांबले को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। उनकी मराठी भाषा में रची आत्मकथा जीना आमुचाई, जो हिंदी में जीवन हमारा शीर्षक से अनुदित व प्रकाशित है, में महाराष्ट्र के डोम समुदाय का जीवन चित्रित हुआ है। विभिन्न मराठी दलित आत्मकथाओं में विभिन्न दलित समुदायों का जीवन अंकित हुआ है। 1995 में प्रकाशित जीवन हमारा के भूमिका में डॉक्टर मनेजर पांडे ने बेबी कांबले की आत्मकथा को दलित स्त्री जीवन का वास्तविक चित्र कहा है। उनके अनुसार जीवन हमारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण आत्मकथा है, क्योंकि इसमें दलित चेतना के साथ साथ नारी चेतना का भी चित्रण हुआ है। डॉक्टर पांडे के अनुसार जीवन हमारा केवल दलित यातना का ही वृत्तांत नहीं है, ये उसके जागरण का भी वृत्तांत है। उस आत्मकथा में दलितों का जीवन संघर्ष ही नहीं, उनकी मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा की कथनी की भी शुरुआत है। बेबी कांबले का जन्म पुरंदर जिले के बीर गाँव में अपने ननिहाल में हुआ था। बेबी कांबले का पिता ठेकेदार था, लेकिन वह बहुत दयालु आदमी था। बेबी कांबले ने गांव के दलित घरों की गरीबी की दशा का वर्णन किया है। पूरे गांव में सिर्फ बेबी कांबले के नाना का घर ही शिक्षित घर था। उनके नाना फराटे से अंग्रेजी बोलते थे। उनको 20वीं सदी के शुरू में 16 रुपये माहवार वेतन मिलता था, जो इन दोनों बड़ी पगार मानी जाती थी। लेकिन वे अपने गाँव के गरीब दलितों के साथ ही रहे, जिनके घर गाँव की सीमा से बाहर थे। सवर्ण जातियों द्वारा उनके साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। सवर्ण जातियों के लोग दलित जाति की बस्ती में मृत पशु फेंक देते थे और दलित उन मृत पशुओं के लिए कुत्तों से संघर्ष करते थे। पूरे डोम मोहल्ले में सिर्फ बेबी कामले के घर में ही चाय बनती थी। आत्मकथा के मध्य में बेबी कामले नए दलित जीवन के इंजीनियर के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करती हैं, जिन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। लेखिका ने दलित लड़कियों की पहली प्रसूति की अमानवीय स्थितियों में बच्चे के जन्म की भयावह परिस्थितियों को भी उघाड़ा है। किस प्रकार अशिक्षित नर्स योनि में हाथ डालकर उसे सोजिश में से भर देती थी, जिससे असहनीय पीड़ा होती थी। इस प्रक्रिया में बहुत सी औरतें मर जाती थीं। बेबी कांबले ने दलितों की हजारों पीढ़ियों की पीड़ा व अपमान सहने वाली उनकी कुर्बानियों का वर्णन दिया है। वे पीपल को उस पेड़ का जिक्र करती है जहाँ बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था, और वे डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध का आधुनिक रूप मानती हैं, जिन्होंने दलितों को इंसान बनना सिखाया। 1930 के आसपास चारों ओर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम गूंजता था। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, युवा, लंबे, गोरा रंग, चौड़ा माथा और सूट बूट पहने, गांव के गरीब कमजोर लोग तो जैसे अपने नायक के भाषण में नहा गए हों। जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समाज के सुधार के लिए माताओं व बहनों से पहला कदम उठाने को कहा। दलित मृत पशुओं का मांस खाते थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के सुधार आंदोलन शुरू होने पर उन्होंने मृत पशुओं का मांस खाना बंद कर दिया। बेबी कांबले की भाषा शैली व्यंजनात्मक व साहित्यिक है। वे दलित समाज की गुलामी की दशा व उनकी दूसरों पर राज करने की इच्छा का जिक्र करती है। सो यदि दूसरों पर राज करना संभव नहीं तो अपने घर के सदस्यों पर ही राज सही। सो घर में बहू गुलाम बन जाती है, घर का सारा काम काज उसे सौंप दिया जाता है। औरतों को उनके पति पशुओं की तरह मारते हैं, कुछ औरतों के सिर फूटते हैं तो कुछ बेहोश हो जाती हैं। बेबी कांबले ने दलित घरों के भीतर दलित स्त्रियों की यातनाओं को बड़ी संवेदना से चित्रित किया है। यह घरेलू और माहौल सामंती मूल्यों पर आधारित है। लेखिका बताती है कि दलित लोग जो सामान्य से आधा जीवन ही जी पाते हैं, वे 45 वर्ष भी मुश्किल से पूरे नहीं करते हैं। लेखिका ने स्कूलों में गांधी बनाम अम्बेडकर का बड़ा दिलचस्प विवरण दिया है, जहाँ उच्च जाति की लड़कियां दलित लड़कियों को अम्बेडकर का नाम लेकर गाली देती हैं, जबकि दलित लड़कियां जवाब में गांधी को उनका प्रतिनिधि कहकर गाली देती हैं। अपनी आत्मकथा के अंत में बेबी कांबले उदास हैं कि दलित बच्चों की वर्तमान पीढ़ी बुद्ध और अम्बेडकर संबंधी कुछ जानकारी नहीं जानती। उन्हें लगता है कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के चक्कर में दलित नेतृत्व भी भ्रष्ट हो गया है। उन्हें यह भी लगता है कि बुद्ध और अम्बेडकर का मार्ग अपनाकर ही दलित मुक्ति संभव है। कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा की तुलना में बेबी कांबले की आत्मकथा ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि पूरी आत्मकथा में भावना का स्पर्श मिलता है। बेबी कांबले की शैली भी प्रभावी है, जबकि बसंतरी ने जीवन तथ्यों को सपाट रूप में सामने रखा है। लेकिन महाराष्ट्र और मराठी भाषा में पहले से ही दलित साहित्य की सशक्त परंपरा है, जिनसे बेबी कांबले आदि लेखिकाओं को प्रवणता हासिल हुई है, जबकि हिंदी दलित लेखन तो अभी अपनी भाषा में दलित साहित्य की प्रवृत्ति को जमाने में ही लगे हैं। अतः दोनों में अंतर स्वाभाविक है, लेकिन सामाजिक जीवन के तथ्यों के रूप में दोनों ही सशक्त हैं, अतः ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। हिंदी साहित्य में दलित प्रवृत्ति को स्थापित करने की प्रक्रिया में नागपुर से सुशीला टाक भौरे ने भी कविता, कहानी व लेखों की कुछ पुस्तकें लिखी हैं। 7 वर्ष के अल्प समय में सुशीला ने 3 काव्य संग्रह, 3 लेख संग्रह व 2 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। प्रायः प्रत्येक वर्ष एक किताब के हिसाब से, कई बार एक साल में 2 किताबें भी। सो इस दृष्टि से उन्हें काफ़ी सक्रिय दलित स्त्री लेखिका कहा जा सकता है। लेकिन सुशीला टाक भौरे का लेखन यद्यपि ईमानदार है, प्रकृति और शैली में सरल है। उनकी अधिकांश कविताओं कहानियों में आत्मकथात्मक स्पर्श है। लेखों की अपनी पुस्तक परिवर्तन जरूरी है में सुशीला ने परिवर्तन की जरूरत को समझने के लिए स्त्रियों की शिक्षा व आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। दलित स्त्री और साहित्य लेख में सुशीला ने शिकायत की है कि पुरुष लेखक स्त्री लेखन का पूरा महत्व स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार स्त्री लेखन प्रायः पुरुष लेखकों की उपेक्षा का शिकार हुआ है। सो उन्होंने दलित स्त्री लेखिकाओं से आह्वान किया है कि वे आगे आए और साहित्य लेखन में नेतृत्व लें। डॉक्टर अम्बेडकर पर एक लेख में लेखिका ने दलित समाज के भीतर की गलत प्रवृत्तियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि दलित चमार स्वयं को दलित भंगी से श्रेष्ठ समझता है और उससे घृणा करता है। उस प्रकार दलित अछूत आपस में नीच ऊंच का व्यवहार करते हैं। दलित लक्ष्य के प्रति अपनी ईमानदारी और सहृदयता से सुशीला टागभौरे आने वाले वर्षों में प्रौढ़ व महत्वपूर्ण दलित स्त्री लेखिका बन सकती है। मराठी में एक पुरुष लेखक डॉक्टर किशोर शांताबाई काले की भी आत्मकथा है, जिसका शीर्षक है छोरा कुल्हाटी का, जो हिंदी में 1997 में छपी है। हालांकि यह पुरुष दलित डॉक्टर की आत्मकथा है, लेकिन इस लेखक की माँ शांताबाई काले की जीवन कथा भी है, जिसमें महाराष्ट्र की कुल्हाटी स्त्रियों की जीवन स्थितियों को उघाड़ा गया है। कुल्हाटी स्त्रियों को नर्तकी रूप में देखा जाता है। किसी सुंदर कुल्हाटी लड़की को शादी नहीं करने दी जाती। अमीर लोग उन्हें चीरा की रस्म से खरीदते हैं व उस अमीर की रखेल बन जाती है। डॉक्टर किशोर ऐसी कुल्हाटी स्त्री शांताबाई काले की संतान है, जिसका पिता कांग्रेस का MLA है। इस विधायक ने शांताबाई से एक बार चीरा किया और पुनः कभी नहीं लौटा। शांताबाई 7वीं तक पढ़ी है और अध्यापिका बनना चाहती है, लेकिन यह समाज उसके सपनों को चकनाचूर करते हुए उसे नर्तकी बनने पर मजबूर करता है। यद्यपि ये नर्तकियां लोक नृत्यों की परंपरा जीवित रखे हुए हैं, तो भी उन्हें रखेल या वेश्या बनने पर विवश किया जाता है। डॉक्टर किशोर ने अपनी आत्मकथा लिखने का साहस किया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार, विशेषतः माँ की अत्यंत अपमानजनक स्थितियों को उघाड़ा है। यह आत्मकथा शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासिक परंपरा में है, जिसमें उन्होंने विक्रूर जीवन स्थितियों को उघाड़ा है। वास्तव में डॉक्टर किशोर आत्मकथा लिखने को शरण कुमार लिम्बाले से ही प्रेरित हुए, जिसमें अपनी माँ की जीवनी शामिल है, जो महाराष्ट्र की दलित नर्तकियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियों में जीती है। इस अर्थ में यह पुरुष आत्मकथा भी दलित नारी लेखन का अंग स्वीकार की जा सकती है। इन सभी रचनाओं में एक बात समान है, दलित समाज के अपने भीतर की दमन संरचना व साथ ही बाहरी सामाजिक दमन संरचना, जिन दोनों ने मिलकर उसके जीवन को अत्यंत क्रूर व दयनीय बना दिया है। बाहरी रूप में इसका दमनात्मक सामाजिक ढांचा, इसमें जाति भेद प्रमुख है, और आंतरिक रूप से खुद दलित समाज ने इन सामंती मूल्यों को अपने आंतरिक ढांचे का अंग बना लिया है। दलित साहित्य भारतीय साहित्य का अंग बनकर उभर रहा है। दलित स्त्री लेखन भी अपनी उपस्थिति महसूस करता रहा है। कुछ रचनाओं में दलित स्त्री लेखन दलित पुरुष लेखन से अधिक मर्मस्पर्शी व सशक्त है, क्योंकि दलित स्त्री की संवेदनाएं अधिक गहरी व उनकी पीड़ा भी व्यापक है। आशा करनी चाहिए कि भारतीय साहित्य में दलित स्त्री लेखन को सम्मानजनक स्थान हासिल होगा, जिसकी ये वाजी रूप से हकदार हैं।